जो देह की रचना और प्रकृति की रचना है के बारे में शास्त्रों में जो लिखा हुआ है, वो कहते हैं कि देह की रचना प्रकृति की रचना एक ही जैसी है, इसमें कोई भेद नहीं है। और ये रचना पांच तत्व से बनी है, इसको पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश कहते हैं। और इन पांच तत्वों के पांच विकार हैं या पांच गुण हैं, जिसको काम क्रोध लोभ मोह अहंकार कहते हैं। काम जैसे जल का विकार है, क्रोध अग्नि का विकार है, लोभ वायु का विकार है, और मोह पृथ्वी का विकार है, अहंकार आकाश का विकार है। इसी प्रकार इन पांच तत्वों की पांच तन्मात्राएं होती हैं, वो भी सूक्ष्म चीज है। इसको शब्द स्पर्श रूप रस गंध कहते हैं। शब्द जो है ये, इससे आपकी श्रवण इंद्रिय है, कान है, इससे आप शब्द सुनते हैं। तो शब्द किसका है? ये आकाशीय तन्मात्रा है। स्पर्श है, ये आप त्वचा से अनुभव करते हो, ये स्पर्श वायु की तन्मात्रा है। रूप आंख से देखते हो, तो ये अग्नि की तन्मात्रा है। रस जिभ्या से ग्रहण करते हो, ये जल की तन्मात्रा है। और गंध जो है ये पृथ्वी की तन्मात्रा है, जो नासिका से आप अनुभव करते हो। तो पांच तत्वों की ये पांच तन्मात्राएं हैं, और इन पांच तन्मात्राओं के बोध के लिए पांच ज्ञान इंद्रियां आपके पास देह में मौजूद है। तो इन सबका जो इफेक्ट है वो किस पर होता है? इंद्रियों के द्वारा शब्द गया, इंद्रियों के द्वारा ही आपका रूप अंदर गया, तो ये किस पे इफेक्ट करता है? सीधा मन पे इफेक्ट करता है। ये अपने आप में बड़ी सूक्ष्म चीज है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये आप देख नहीं सकते, दिखाई पड़ेगा। तो ये तन्मात्राएं सूक्ष्म हैं, ये तत्वों से ही, ये तत्वों से ही बनी है, या तत्व इनसे बने हैं, आप कुछ भी कह लो इनसे, लेकिन इसका इफेक्ट कहां पड़ता जाके? मन के ऊपर। इनके संस्कार कहां बनते हैं? मन के अंदर। तो ये यही आपके अनुभव है, यही आपके अनुभव में। लेकिन जो संसार है और जो आपकी देह है, ये अपने आप में जड़ है, इसमें अनुभव करने वाली कोई चीज नहीं है। ये प्रक्रिया तो ऑटोमेटिक चल रही है, पांच विकार की प्रक्रिया भी चल रही है, पांच तन्मात्रा की प्रक्रिया भी चल रही है, सब ये प्रक्रिया चल रही है, बन भी रही हैं, बिगड़ भी रही हैं, इसमें परिवर्तन भी हो रहा है। लेकिन इस प्रक्रिया में कोई भी चीज अनुभव करने वाली चीज नहीं। तो इतनी विशाल प्रकृति है, सारा ब्रह्मांड जिसमें शामिल है, तो पूरी पूरी इसको प्रकृति ही कहते हैं। लेकिन इसमें पूरी प्रकृति में अनुभव करने वाली कोई चीज नहीं। तो इसलिए जो अनुभव करने वाली सत्ता है उसको ईश्वर कहते हैं। उसमें चेतना है, ईश्वर में चेतना है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? चेतन शक्ति कहते हैं। उसको कंट्रोलर कहते हैं। तो उसी की शक्ति के कारण ये सारी प्रक्रिया पूरी प्रकृति की सही सलामत चल रही है। जब से प्रकृति की रचना हुई है आज तक उसमें कोई बदलाव नहीं आया, जैसी थी प्रकृति वैसी ही चल रही है। ना उसके तीन गुणों में कोई बदलाव आया, सिद्धांत में कोई बदलाव आया, ना पांच तत्वों में कोई बदलाव आया, ना उनकी तन्मात्राओं में कोई बदलाव आया, ना उनसे जो देह बनती है उसकी रचना में कोई बदलाव आया, वो सब वैसी की वैसी चल रही है। तो इसलिए देह और ये बाहर की प्रकृति ये बिल्कुल एक ही, इसमें लेश मात्र भी कोई परिवर्तन कोई अंतर नहीं
है।
सब सब जो कुछ आप अनुभव कर सकते हो, जो कुछ भी आप सोच सकते हो, सारी प्रकृति, तो इसमें कोई परिवर्तन आने की कभी भी कोई संभावना नहीं है। तो परिवर्तन हमको ये दिखाई पड़ते हैं शरीर के कारण, शरीर में परिवर्तन हो रहे हैं, देखो बचपन है, जवानी आ रही है, बुढ़ापा आ रहा है, मौत हो रही है, ऐसी प्रकृति में परिवर्तन नजर आते हैं। लेकिन पूरी प्रकृति की एक साथ बात की जाए तो वहां पर कोई परिवर्तन नहीं है, या उसमें परिवर्तन आते रहते हैं, एक प्रक्रिया है उसकी, लेकिन संपूर्ण प्रकृति में कोई चेंज नहीं होती। इसका जो इफेक्ट पड़ता है वो मन के संस्कारों पर पड़ता है। जैसे कि आपके संस्कार तमोगुणी बन जाते हैं, आपके संस्कार रजोगुणी बन जाते हैं, आपके संस्कार सतोगुणी बन जाते हैं। तो ये संस्कार कहाँ बनते हैं? आपके मन के अंतर्गत ही बनते हैं। इसके जो इंप्रेशंस हैं, इसका जो प्रभाव है, वो सूक्ष्म ऑर्गन जो आपके देह के अंदर मौजूद है, इसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, या इसको मन कहते हैं, या इसको अंतःकरण कहते हैं, तो उसमें ये संस्कार हमारे सारे बनते रहते हैं। ये भी क्यों बनते हैं? ये इसलिए बनते हैं क्योंकि इस देह के अंदर भी जो मैं हूं, तो मैं भी चेतन हूं, मुझको मेरे अंदर चेतना है मन के प्रति, मेरे अंदर चेतना है देह के प्रति, मेरे अंदर चेतना है बाहर की प्रकृति के प्रति, इसको मैं जानता हूं। इस चेतना के साथ साथ मैं अपने आप को इस देह से अलग करके नहीं जानता, मैं अपने आप को देह करके ही जानता हूं कि मैं देह हूं। तो जैसे प्रकृति में आप देखिए कि सारी प्रक्रिया हो रही है, निरंतर नहीं हो रही है, पूरी प्रकृति कैसे चल रही नहीं चल रही, और इस पूरी प्रकृति में मनुष्य का कोई रोल नहीं है दूर दूर तक। लेकिन ये जो अपना शरीर मेरा है, ये जो प्रकृति लेके मैं घूम रहा हूं, इसके बारे में मैं कंफ्यूज हूं, इसको गलती से इसको चेतन समझ कर, देह को चेतन समझ कर, मैं जो कुछ भी इस देह से कार्य होते हैं उन कार्यों को मैं कर रहा हूं, ये भाव मेरे अंदर बन जाता है। अब सूर्य हालांकि प्रकाश दे रहा है और सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, और सूर्य भी अपनी जगह स्थायी नहीं है, सारा ब्रह्मांड में हर चीज घूम रही है, ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया चल रही है, कितनी एक्यूरेट चल रही है। लेकिन देह के बारे में मेरे अंदर ये हमेशा भय बना रहता है कि मैंने यदि ध्यान से नहीं दिया तो ये सब बिगड़ जाएगा, इसकी ऑटोमेटिक प्रक्रिया नहीं है, मेरे करने से होता है। बचपन से ही मैंने यही संस्कार इकट्ठे किए और यही मैं सोचता हूं और यही मेरे आदत बन जाती है। तो जिस प्रकार सारी प्रकृति चक्र तीन गुणों के अंतर्गत घूम रहा है, सारा प्रकृति चक्र पांच तत्वों के अंदर घूम रहा है, उसी प्रकार मेरी देह भी वैसे ही काम कर रही है, क्योंकि ये प्रकृति का ही अंग है। जैसे पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य प्रकृति का अंग है नहीं है। यदि चंद्रमा को अहंकार हो जाए कि देखो मैं घूम रहा हूं, मैं वनस्पतियों में रस पैदा कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, चेतना यदि चंद्रमा में आ जाए तो क्या समझेगा? ये तो करेगा नहीं करेगा। तो मेरे साथ बस यही गलती हुई, ये जो मेरी देह रूपी प्रकृति है ये पूरी तरह से इस प्रकृति का ही अंग है। जिस प्रकार प्रकृति का अंग सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी है, उसी प्रकार ये मानव देह भी उस प्रकृति का ही अंश है, उस प्रकृति का ही अंग है, और जिस प्रकार ईश्वर के हुक्म में सारी प्रकृति घूम रही है उसी प्रकार मेरी देह भी ठीक वैसे ही घूम रही है। इसमें मेरी करनी कोई काम नहीं कर रही है। इस देह की रचना में, देह के बनने बिगड़ने में, देह के कर्मों में मेरी चेतना कोई काम नहीं कर रही है, ये ईश्वर की चेतना काम कर रही है। इसीलिए वाणी कह रही है सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो यही सार है ज्ञान। तो जीव ने ये मानव जीवन कैसे व्यतीत करना है, अकर्ता होने के लिए। अभी मैं कर्ता बना हुआ हूं, जब कर्ता बना हुआ हूं तो मैं इस कंफ्यूजन में जी रहा हूं कि मैं देह हूं, क्योंकि कर्म तो देह से हो रहे हैं ना, कर्म देह से हो रहे हैं। और यदि मैंने अपने आप को देह समझ लिया तो सारे कर्म मैं कर रहा हूं, ये भाव आपके अंदर ऑटोमेटिकली आएगा या नहीं आएगा, या बच जाओगे इससे? तो ईश्वर भक्ति क्या है फिर? ईश्वर भक्ति मात्र इतनी ही है कि तूने इस भाव से मुक्त होना है कि मैं देह हूं, या इस भाव से मुक्त होना है कि मैं करता हूं। दोनों बातें एक ही जैसे हूं। यदि तू कर्तापन से मुक्त हो गया तो देह से अलग हो जाएगा, क्योंकि तू देखेगा कि देह तो अपने वैसे संचालन हो रहा है, वैसे इससे कर्म हो रहे, मेरे ना चाहते हुए भी वैसे कर्म हो रहे हैं। ये प्रैक्टिकली बोध हो जाएगा कि कर्तापन मेरा अहंकार था, कर्तापन मेरी अज्ञानता थी, वास्तव में मैं करता हूं। तो मनुष्य जन्म जो मिला आपको वो इसी चीज को सीखने के लिए मिला है बस, और कुछ करने के लिए नहीं मिला है। क्योंकि मेरा जो शारीरिक जीवन है ये प्रकृति के अधीन है, और इसका संचालन अंतर्यामी ईश्वर कर रहा है। अंतर्यामी जो चेतना है मेरे देह के अंदर, जो जीवन शक्ति है जिसके आधार पर ये जीवन देह का चल रहा है, मैं देह को जीवित नहीं रखूंगा। तो जब तक देह जीवित है, अर्थात जब तक ये क्रिया कर रही तभी तक जीवित है, तब तक प्रभु शक्ति से ये कार्य हो रहा है। इसीलिए वाणी कह रही है, स्पष्ट निर्णय दे रही है, देखो ना हम उसको इस तरह से ध्यान नहीं देते, स्पष्ट निर्णय दे रही है कि जो हो ना सो हो रहा प्रभु की आज्ञा मानी। जो हो रहा है तो देह के द्वारा, वो प्रभु की आज्ञा का मतलब प्रभु के द्वारा ही हो रहा है। आगे पीछे ना कर सके तिल भरते से फरमाई, तिल मात्र भी उसमें से मैं जद्दो बदल उसमें नहीं कर सकता। तो अब बताइए ये दोहा ये मुझको बता रहा है नहीं बता रहा है? तू निरर्थक कर्ता बन के इस देह और बाहर की प्रकृति से, बाहर के लोगों से मोह बनाए हुए और अहंकार पाले हुए कि मैं इनका पालन कर रहा हूं, मैं करता हूं, इस देह का भी और दूसरे परिवार के लोगों की देह का भी मैं करता हूं, मैं चीजें संभाल लूंगा, नहीं संभाली तो बिगड़ जाएंगी। ना प्रकृति में पूरी में कुछ बनना है, ना पूरी प्रकृति में कुछ बिगड़ना है, सत्य यह है। जब तक ये प्रकृति मेरे अनुभव में आ रही है इसका संचालन ईश्वर कर रहा है। सारे शास्त्र इसी बात को कह रहे हैं, सारे शास्त्र, और हर सत्पुरुष ने भी इसी बात को कहा है। देखिए आज तक मैंने इस बात पर विश्वास नहीं किया, मेरी स्थिति यह है कि आज तक मैंने इस बात पर विश्वास नहीं किया। और कह देता हूं महाजी की बात बिल्कुल सत्य है, कृष्ण की बात बिल्कुल सत्य है, सब सत्पुरुष सत्य बोलते हैं। अरे सत्य बोलते हैं तो सत्य बात पर विश्वास क्यों नहीं करता? क्योंकि मैंने इस विज्ञान के बारे में इस प्रकार से पढ़ने की जानने की कोशिश ही नहीं की। भाई पूरा विज्ञान समझोगे तभी तो आप किसी गलती का निर्णय कर पाओगे, हाँ ये गलती हो रही है मुझसे, यहां फंसा हुआ हूं। तो सत्पुरुष इसीलिए ये पूरा विज्ञान बारीकी से आपके सामने पेश करते हैं। तो जो मन है उस पर ये प्रकृति के असर आ रहे हैं या संस्कार बन रहे हैं, वो भी क्यों बन रहे हैं? क्योंकि मैं कर्ता बना हुआ हूं। संस्कार इसलिए बन रहे हैं क्योंकि मैं कर्ता बना हुआ, तो मेरे कर्ता बनने के कारण वो सारे कर्म जो प्रकृति में ऑटोमेटिक हो रहे हैं, तो सब कर्मों के संस्कार मेरे मन के अंदर बनते चले आ रहे हैं, केवल उस कर्ता बन के। तो यही संस्कार फिर आपके मन में संकल्प रूप में उदय होते हैं, इच्छाओं के रूप में उदय होते हैं, फिर आप कहते हो ये मेरी इच्छा, क्योंकि आपकी आपके कर्तापन के कारण ये संस्कार बने ना। इसलिए जब संस्कार उदय होंगे तो कहोगे आप ये मेरी इच्छा, उस इच्छा से आप परेशान होगे, इच्छा पूरी हो जाएगी तो खुश हो गया। तो वो जो इच्छा पूरी होने की प्रक्रिया जो होगी वो भी तो कर्म ही होगा ना, बिना कर्म के तो इच्छा पूरी नहीं होती ना। आपकी देह से कर्म हो, दूसरे की देह से कर्म हो, कर्म तो प्रकृति में ही होगा, और प्रकृति का सारा कर्म प्रारब्ध के अधीन है। यदि मैं जब तक करता हूं, जब तक मेरे अंदर कर्तापन है, तब तक मेरे साथ क्या बंधा हुआ, प्रारब्ध चक्र बंधा हुआ। और प्रारब्ध किसे कहते हैं, देह और संसार दोनों चीज, देह और संसार का जितना भी क्रियाकलाप है, जो कुछ भी मेरे सामने से मेरे अनुभव से गुजरेगा, वो सारा का सारा प्रारब्ध है, वो मेरा प्रारब्ध है। कर्ता बन के उस सारे कर्मों का फल मैंने इकट्ठा किया है, अब उसको भोगना है मैंने, तो प्रकृति उसका भुगतान करने के लिए ये प्रारब्ध तैयार करती है, और वैसी ही क्रिया उस प्रारब्ध के अनुसार आपकी चलती है। वहां भी यही कंफ्यूजन आपके अंदर बना हुआ है कि मैं देह हूं, मैं कर रहा हूं, जबकि वो प्रारब्ध के अधीन सारी क्रिया घूम रही है। वो इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण साफ साफ कह रहे हैं, ईश्वरः सर्वभूतानां रत देशे अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन सारे प्राणियों का मैं ईश्वर हूं, मालिक हूं, मैं उनका कर्ता हूं, और मैं उनके अंदर ही स्थित हूं, और क्या कर रहा हूं, भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, इस यंत्र रूपी शरीर में स्थित प्राणियों को, मैं प्राणी हूं ना, जो अनुभव करने वाला है जीव उसको प्राणी भी कहते हैं, इस यंत्र रूपी शरीर में स्थित प्राणियों को अपनी योग माया से संसार में भरमाता हूं, संसार में घुमाता हूं, संसार में कर्म करवाता हूं। तो आपकी देह का संचालन देखो, जीवित रखना मारना ये प्रभु का काम, देह से कर्म करवाना ये प्रभु का काम, और देह प्रकृति का अंग है तो प्रकृति में ही तो कर्म करेगी, और प्रकृति भी जो कर्म कर रही है इस देह को जीवित रखने के लिए या संचालन करने के लिए, ये एक ही चीज है। जैसे सूर्य चंद्रमा तारे इत्यादि हैं, कहते नहीं सारे नक्षत्र का प्रभाव मनुष्य की देह पे पड़ता है, ज्योतिष कहता नहीं कहता, तो सारी प्रकृति ये एक ही है, यहां एक दूसरे पर हर चीज का प्रभाव निरंतर पड़ रहा है, लेकिन मैं जो उस देह का कर्ता अपने आप को समझ रहा हूं, या यूं कहिए मैं अपने आप को देह समझकर कर्म कर रहा हूं, तो उन सारे कर्मों का फल मुझको भोगना पड़ता है, क्योंकि सत्य यह है कि भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, इस यंत्र रूपी शब्द देखो क्या प्रयोग किया गया किताब, यंत्रारूढ़ानि माया, इस यंत्र रूपी देह में आरूढ़ अर्थात देह में स्थित प्राणियों को मैं अपनी माया से संसार में भरवाता हूं। तो भ्रमण कौन कर रही है, देह, और प्राणी कर्ता बनने के कारण ये सुख दुख में भ्रमण कर रहा है, प्राणी काय में भ्रमण कर रहा है, काय में बेचैन है, सुख दुख में बेचैन, कर्मों के फल का जो इफेक्ट है सुख रूप दुख रूप बनना बिगड़ना मन के अनुकूल मन के प्रतिकूल, उसके कारण मैं बेचैन रहता हूं, और ये बेचैनी आप संसार में कुछ भी क्यों ना कर लीजिए, टॉप से टॉप हाईएस्ट दर्जे का कर्म क्यों ना कर लीजिए, लेकिन ये बेचैनी आपकी सदैव बनी रहेगी जब तक आप कर्ता बने रहोगे, जब तक आप अपने आप को देह समझते हो। इस बेचैनी से मुक्ति आपकी नहीं हो सकती, क्योंकि आप अज्ञानी बनकर घूम रहे हो संसार। आप अपनी स्थिति से ही भटके हुए, कुछ का कुछ समझ रहे हो। जैसे कि महाभारत की कहानी आती ना, कि द्रौपदी के राजमहल में जब दुर्योधन आए तो ऐसी रचना रची थी उन्होंने कि जहां धरती थी वहां पानी नजर आता था, जहां पानी था वो धरती नजर आती थी। तो दुर्योधन जब जहां पृथ्वी थी वहां चलने की कोशिश करी उसने, तो गिर पड़ा वो पानी में, पानी था। अब द्रौपदी हंस रही, जहां पानी नजर आ रहा था वहां रुक गया दुर्योधन, ये तो पानी है। अभी द्रौपदी हंस रही, देखो धरती है ये पानी समझ रहा है इसको, तो कुछ का कुछ समझ रहे ना। तो ये स्थिति हमारी भी, हम कुछ का कुछ समझ रहे हैं और ऐसी परेशान होते रहते। तो समस्या हमारे साथ ये है कि संसार में गुरु कोई है नहीं, क्योंकि जितने लोगों को जानता हूं मैं सब इसी अज्ञानता में भटकते हैं। चाहे बड़े से बड़ा वैज्ञानिक है, चाहे बड़े से बड़ा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है, चाहे बड़े से बड़ा राजा है, कोई भी है, लेकिन इस अज्ञान में सभी भटक रहे हैं। तो मैं किसके पास जाऊं? जिंदगी भरी उन्हीं के बीच में बीतती है, इसलिए मेरे बचाव का कोई रास्ता नहीं। एकमात्र रास्ता है तो ऐसे व्यक्ति पर मेरा विश्वास आ जाए जो इस बंधन से मुक्त हो, जो माया के बंधन से मुक्त हो। तब मुझको मौका मिलता है कि मैं इस बंधन से मुक्त हो सकता हूं। तो ऐसे व्यक्ति का नाम ही गुरु है। गुरु इस मोह से पूरी तरह से मुक्त है, उसके अंदर कभी लेश मात्र भी यह भाव नहीं आता कि मैं देह हूं। इसलिए कभी लेश मात्र भी उसके अंदर यह भाव नहीं आता कि मैं करता हूं। तो ऐसा सत्पुरुष जिसको हम सदगुरु कहते हैं, जिसको हम ब्रह्म ऋषि कहते हैं, ऋषि का मतलब होता है दृष्टा, ऋषि का मतलब होता है दृष्टा, कर्ता और भोक्ता नहीं, मैं कर्ता और भोक्ता हूं, ऋषि दृष्टा है। ईश्वर को साक्षी कहा जाता है ना, ईश्वर साक्षी है, ईश्वर दृष्टा है। तो मैंने भी कर्ता और भोक्ता नहीं बनना, मैंने दृष्टा बनना है। तो दृष्टा किसे कहते हैं? जो साक्षी है, जो उस कर्म में जिसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उस कर्म में उसकी आसक्ति नहीं है, उस कर्म का वो करने वाला नहीं बनता। तो जीव भी साक्षी है वास्तव में, लेकिन जब तक उसके अंदर ये अज्ञान है कि मैं करता हूं, मैं देह हूं, तब तक वो सुख दुख का भागीदार बना जाता है और सुख दुख के कारण सारी जिंदगी बेचैनी में कटती। तो ये जो विज्ञान है मेरे शरीर का और ये प्रकृति का, ये विज्ञान बिल्कुल एग्जैक्ट है, ये कभी नहीं बदला। जब से वैदिक तालीम प्रकट हुई, वेद प्रकट हुए, ये ज्ञान भी साथ में प्रकट हुआ, और सारे ऋषि इसी ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर ज्ञानी कोई नहीं। जिस युग में भी सीखना है मैंने यही ज्ञान सीखना है। तो पूर्ण गुरु पर जब मेरी श्रद्धा आती है, जो ब्रह्म ऋषि, तब उसके जीवन को मैं देखता हूं। श्रद्धा का मतलब क्या हुआ? श्रद्धा का मतलब ये होता है कि मेरी आस्था इस पर टिक गई, वहां फ्लिकरिंग नहीं है, वहां जो है आपके विश्वास में चंचलता नहीं है, स्थिर विश्वास है कि ये वास्तव में ब्रह्म ऋषि है, ये ब्रह्म ही है, इसी के अधीन सारी सृष्टि चल रही है और ये किसी के अधीन नहीं है। तो ऐसा जो गुरु है उसके जीवन से मैं सीखता हूं उसके ज्ञान से मैं सीखता हूं। ठीक उसी प्रकार जैसे कोई स्टूडेंट किसी ने इंटर पास कर लिया हो, इंजीनियर बनने की इच्छा है, तो जिसकी इंजीनियर बनने की इच्छा है काबिलियत नहीं है अभी इंजीनियर का कंपटीशन देने की भी, तो ऐसे गुरु की तलाश करता है, ऐसे शिक्षक की तलाश करता है जो उसको कंपटीशन में पार करवा दे ताकि उसको इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाए और इंजीनियर बन जाए। तो यदि उसने तलाश सही कर ली सही शिक्षक की तो कंपटीशन में निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, और इंजीनियर बन जाएगा नहीं बन जाएगा, तो वही हमारी स्थिति थी। यदि मेरी आस्था ठीक गुरु पर आ गई तो वास्तव में ब्रह्म ऋषि बनावट नहीं, ब्रह्म ऋषि से एक कदम नीचे नहीं है वो, चाहे वो समाधि का मालिक भी क्यों ना हो वो गुरु नहीं हो सकता। महाजी साहब कह रहे हैं संत अभिलाष, जब तक आत्मलीनता ही प्राप्त ना हो जाए तब तक वो गुरु कहलाने का हकदार नहीं। तो ब्रह्म ऋषि को जब आप गुरु बनाते हो उस पर आपकी श्रद्धा आती है तब आप उसके अनुसार सोचना शुरू करते हो, उसके अनुसार आप सीखना शुरू करते हो और अपने बारे में, प्रकृति के बारे में, हर चीज के बारे में आप उसके अनुसार निर्णय करना शुरू करते हो। निर्णय तो उसने दे दिया, अब आप उस निर्णय पर अपना विश्वास लाते हो, कुछ तर्क करके, कुछ जो है एक विचार के प्रक्रिया से गुजरते हो, तो उसी निर्णय पर आपकी बुद्धि पहुंच जाती है। जब बुद्धि वहां पहुंचती है तब आप इस तरह से सोचते हो कि देह पांच तत्व की बनी है, ये पृथ्वी भी पांच तत्व की बनी है, सारा ब्रह्मांड ये पांच तत्व का बना है, पांच तत्व के पांच विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और तीन गुण हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और ये पांच तन्मात्राएं हैं शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन पांच तन्मात्राओं के अनुभव के लिए पांच ज्ञानेन्द्रियां हैं। इस प्रकार से सारा विज्ञान आप सीखते हो और देह प्रारब्ध के अधीन या ईश्वर के अधीन रहकर यह काम करती है, प्रभु इससे काम, इस देह से प्रारब्ध के अनुसार काम लेते हैं। इसीलिए मैं करता नहीं हूं, ये मेरी गलत फहमी है कि मैं करता हूं। आप इस निर्णय पर पहुंचते हो थ्योरेटिकली, शास्त्र पढ़ के गुरु की बात श्रवण करके आप इस निर्णय पर पहले बौद्धिक रूप से पहुंचते हो कि ये रचना है, ये प्रक्रिया है, तब आप अपने बारे में सोचना शुरू करते हो कि मैं जीव हूं जो मन के बंधन में है, देह के बंधन में है, संसार के बंधन में है, तो मैंने इस बंधन से मुक्त होना है। लेकिन सीधा सीधा इसके बंधन से मैं मुक्त हो नहीं सकता, तो इस देह के अंदर एक और देह है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, उसका नाम है मन, उसका नाम है अंतःकरण, उसी को कहीं हृदय भी कहा गया। तो वो जो मन है उसमें मेरी करनी के संस्कार इकट्ठे हो गए, मैंने अपने आप को देह समझ के जो कर्म किए हैं वो सब उसके संस्कार मन के अंदर इकट्ठे हो गए, तो अब उससे मैं कैसे निकलूं? तो सत्पुरुष कह रहे हैं कि अभी तू करता है, अभी तू अपने आप को देह समझ रहा है, एकदम से तेरे अंदर ये भाव खत्म नहीं होगा, तू समझ रहा है कि मैं एकदम से इस थ्योरी के साथ से सोचना शुरू कर तो हो जाएगा ना, नहीं हो ही सकता, हो ही नहीं सकता, इसकी भी एक प्रक्रिया है लंबी, उससे तुझे गुजरना होगा। तो कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि पहले प्रेमी तू जो खोटे कर्म है, जो गलतियां हैं, तू जानता है ये गलतियां हैं, सामाजिक रूप से तू जानता है ये गलतियां, तो उन गलतियों को करना छोड़। उसके पश्चात तू जो जीवन जी रहा है संसार के सुख इकट्ठे करने के लिए, इसको भोगवादी जीवन कहते हैं, जिसको मादावादी जीवन महाराज जी कह रहे हैं, तो इस जीवन को तू सिंप्लीफाई कर, अर्थात सीमा में ला, और जरूरतें पूरी करने के लिए, परिवार की, देह की, अपनी देह की जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे की कमाई कर मर्यादा में, और मर्यादा में संसार के भोग इकट्ठे कर ताकि तेरी आवश्यकताएं पूरी हो जाए। तब क्या होगा, तेरे पास वक्त बचेगा, तेरे पास जो रात दिन की जो ये सोच संसारी बनी हुई है, बिगड़ी हुई, इस सोच से थोड़ी मुक्ति मिलेगी, और तू ईश्वर के बारे में सोचने के लिए वक्त निकाल पाए, और तेरे दिमाग में जो प्रेशर बना रहता है कि कोई काम बिगड़ तो नहीं जाएगा, ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये सारे जो निश्चय तेरे अंदर बने हुए हैं जिसके कारण तू ईश्वर के स्मरण भी नहीं कर पाता, ईश्वर की याद भी नहीं कर पाता, तो वो प्रेशर तेरे दिमाग पर कम होगा। जब तू गुरु से ये सीखेगा कि सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, तो जब कर्ता भगवान है तो फिर मैं कर्ता क्यों बना घूमूंगा, तो जो कुछ भी मेरी देह से ठीक कर्म बन पाता है मुझसे, मैं कोशिश करता हूं, तो उसका जो फल है कर्म का वो मैं ईश्वर के हुक्म के अंतर्गत देखना शुरू कर देता हूं कि प्रभु साधन तो ये देह है इस कर्म करने का, लेकिन ये कर्म आपकी प्रकृति में पहले से ही निश्चित है और इसको करवाने वाले भी आप ही हो, और इसका जो फल मेरे मन के अनुकूल निकला है चाहे प्रतिकूल निकला है, इस फल को देने वाले भी आप ही हो, इसलिए मैं इसमें क्यों बेचैन हो रहा हूं। तो इसको महाराज कहते हैं ईश्वर परायणता, ईश्वर के आगे समर्पण कर देना कि प्रभु तू करता तू हरता, तू ही फल का दाता है, और जो फल मेरे मन के अनुकूल या प्रतिकूल आ रहा है मैंने इस फल से भी कोई नाता नहीं रखना है, तो ना तेरा कर्म से नाता है ना तेरा कर्म फल से नाता है, तो दोनों को तू प्रभु की इच्छा समझकर विचार करने की कोशिश करता है कि प्रभु ने किया है, प्रभु ने फल दिया है, ना मेरा फल से कोई वास्ता है ना मेरा कर्म से कोई वास्ता है, तो आप उस दोनों हालतों में सम रहने की कोशिश करते, फल तो सुखरूप होगा या दुखरूप होगा, कर्म मन के अनुकूल होगा या मन के प्रतिकूल होगा, लेकिन उसमें आप सम रहने की कोशिश करते हो क्योंकि आपने इस देह के बंधन से, कर्तापन के बंधन से मुक्ति पानी है, और इन पांच विकारों से मुक्ति पानी है, यही तो बाधा है ईश्वर दर्शन में, यही की तो बाधा है आपकी, तो इसीलिए धीरे धीरे जैसा गुरु का मार्गदर्शन कह रहा है, जैसा शास्त्र कह रहे हैं, वैसे वैसे आप धीरे धीरे ईश्वर प्राण होते चले जाते हो, और संसार प्राणता आपके अंदर जो है, देह प्राणता जो आपके अंदर है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाती है, जिस अनुपात में ईश्वर प्राणता बढ़ेगी उसी अनुपात में देह प्राणता आपकी कमजोर होती चली जाएगी, और इस हालत में जब आप सिमरन करोगे अंदर ईश्वर का, तो ये भाव भी आपके अंदर बना रहेगा, देखो प्रभु है, मैं प्रभु की याद कर रहा हूं, इसलिए अंदर याद करने की बात कही जाती है, आंख बंद करके अंदर स्मरण करो, पहले आपसे कहा जाता है कि गुरु मंत्र का जाप करो, तो गुरु मंत्र क्यों कहते हैं, कि गुरु मंत्र नहीं होता, वो मंत्र रूप में ईश्वर है, वो लाइव गॉड है, गुरु मंत्र में इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं, मंत्र को गुरु मंत्र को ईश्वर क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि वो वास्तव में ठीक उसी प्रकार लाइव गॉड है जैसे कि बर्फ जो है वो लाइव वाटर है, बर्फ पानी ही है ना, लेकिन रूप में भेद है, इसलिए मंत्र में और ईश्वर में रूप का भेद तो है वहां पर, लेकिन शक्ति का भेद नहीं, शक्ति इसमें वही है जो ईश्वर में है, वही शक्ति मंत्र में है, तो इधर आप ईश्वर प्राणता धारण किए हुए हो, उधर आप मंत्र का उसको ईश्वर जानकर मौन होकर जाप कर रहे हो, तो क्या होता है, मंत्र शक्ति से आपके मन के जो संस्कार हैं, जो कर्तापन के कारण गहरे बने, अपने आप को देह समझने के कारण गहरे संस्कार बन गए, वो संस्कार धीरे धीरे आपके कमजोर पड़ने लगते हैं, उनके इम्प्रेशन जो है वो धीरे धीरे इरेज होने लगते हैं, मिटने लगते हैं। तो ये जो मंत्र शक्ति है ये अंदर ही ईश्वर शक्ति के रूप में प्रकट हो जाती है, क्योंकि ईश्वर शक्ति ही था वो। जैसे साक्षी में ईश्वर प्रायणता बढ़ी, जब ईश्वर देखता है कि यह मेरे प्राण हो गया, अब ये भोगों के लिए नहीं जीना चाहता, अब ये मेरे लिए जीना चाहता है, तो ईश्वर मंत्र उसी शक्ति में कन्वर्ट हो जाता है जिस शक्ति का वो ठोस रूप था। जैसे कि बर्फ को जब गर्मी मिली तो पुनः पानी में कन्वर्ट हो जाता है, पानी को जब वासना रूपी ठंडक मिलती है तब वो बर्फ बन जाता है। इसीलिए मैं भी एक ठोस शरीर बन जाता हूं वासना के कारण है, ये सब ईश्वरी शक्ति अल्टीमेटली, लेकिन मैं अपनी वासना के कारण ठोस शरीर बन जाता हूं। तो उसी प्रकार जो है पानी भी अपना जैसे रूप बदलता है, वास्तव में पानी का पानी ही है वो, बर्फ बन गया। इसी प्रकार मंत्र है वो वास्तव में ईश्वर शक्ति ही है, लेकिन वो मंत्र बना है इसीलिए ताकि मैं उसका संग कर सकूं, नहीं तो मैं कैसे संग करूंगा ईश्वर। तो मैं उस अंतर्यामी ईश्वर का संग करके उस ईश्वर के प्रभाव से परिचित होता है। तब उस ईश्वर में जब मेरी स्थिति बनती है तो उस समय ये सारी प्रकृति जो नाम रूपात्मक है इसका ये रूप खत्म हो जाता है। इतनी विशाल प्रकृति का रूप खत्म हो जाता है, ये उस मूल रूप में आ जाती है जिसको गीता में अव्यक्त कहा गया। अभी उसने नाम रूप धारण नहीं किया है, नाम रूप धारण करने से पहले से जो स्थिति है उसकी, उसको अव्यक्त कहते हैं। व्यक्त नहीं हुई है, प्रकट नहीं हुई है। तो ये नाम रूप में, पांच तत्व के रूप में, तीन गुणों के रूप में ये पूरी प्रकृति उससे प्रकट होती है। तो साधना की अंदर ऐसी हालत आती है कि ये मैं उस ईश्वर शक्ति को उस रूप में अनुभव करता हूं जहां नाम रूप है ही नहीं। मेरा अनुभव वहां पर है लेकिन नाम रूप वहां नहीं है। तो उस स्थिति से फिर जब मैं जागृति में आता हूं तो देखता हूं कि फिर वही संकल्प पैदा हो रहे हैं, वही सारे अनुभव पैदा हो रहे हैं, वही ठोस के सामने, लेकिन मेरा अनुभव आप बता रहा है कि ये सही सत्य नहीं है, इसका वो रूप सत्य है जो मैं अंदर साधना में अनुभव करता हूं। तो अब बताइए मुझे, इसी जीव का ये अपना अनुभव बता रहा है जो शास्त्रों में शब्दावली प्रयोग हो रही है, मैं अपने अनुभव से जानता हूं ये क्या चीज लिखी हुई है। उसके पश्चात फिर जीव की वही स्थिति आती है जिसको महाजी कहते हैं कि आत्म अनुभवता फिर आत्म लीनता। ये प्रकृति उसी पुरुष में लीन हो जाती है जिस पुरुष से ये प्रकट हुई। तो इसीलिए इसका जो मूल रूप है वो क्या है, वो अव्यक्त है, और अव्यक्त का जो मूल है वो है पुरुष है, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं या जिसको हम साधारण रूप में ईश्वर कहते हैं। तो सारी रचनाओं से ईश्वर से प्रकट हुई है, मेरे अंदर यदि कर्तापन खत्म हो जाए तो प्रभु अंतर्यामी प्रभु मुझको वहीं उसी स्थिति में ले जाते हैं जहां ना नाम है, ना रूप है, ना गुण है, ना कर्म है। तो डिजायर किसकी करोगे, डिजायर किसकी करे। तो इसीलिए जब तक इस विज्ञान को आप सीखते नहीं और जब तक इस पर आपका पूरा विश्वास नहीं आता, पूरा विश्वास कि वास्तव में ऐसा ही है, तब तक आप उस स्पिरिट से, उस भावना से ईश्वर मार्ग पर नहीं चलोगे। कुछ चीजें मान लोगे, कुछ नहीं मानोगे, फिर आपकी भक्ति भी लंगड़ी होगी, फिर आप कभी हो जाएगी कभी नहीं होगी, कभी उन्नति हो जाएगी फिर पतंग कर लोगे अपना, यही कर लोगे। तो निश्चय जब पक्का होता है, बिना गुरु के ये निश्चय नहीं आया, क्योंकि गुरु का शरीर को देखोगे, गुरु के जीवन को देखोगे तो पूरा जो गीता लिखी हुई है, पूरी जो संतावाद लिखी हुई है उसके जीवन पर घटित होगी वो, महा जी खुद कहते प्रेमी इन्होंने एक बात भी ऐसी नहीं लिखी जो इनके जीवन में घटी ना हो। तो गुरु क्या कह रहा है, इन्होंने एक बात भी ऐसी नहीं लिखी जो इनके जीवन पर घटी ना हो। जो कुछ लिख रहे हैं ये अपने अनुभव से लिख रहे हैं, तो वहां थ्योरी है कहां, वहां थ्योरी कहां है वहां। इसीलिए जहां मेरा निश्चय खड़ा हुआ है और जो वास्तविकता है, इसमें इतना बड़ा भेद है कि मेरी बुद्धि चकरा जाती है। तो इसलिए बिना श्रद्धा के गुरु पर यह मार्ग तय नहीं हो सकता आपका, संशय बुद्धि आपके खत्म नहीं हो सकती। याद रखिए, आप सारे शास्त्र पढ़ जाओ जितने आप दुनिया में लिखे गए हैं, आपकी बुद्धि निश्चय नहीं कर पाएगी, इसमें अनिश्चय खड़ा रहेगा। जब किसी पूर्ण गुरु पर निश्चय आएगा, चाहे महर्षि रमण पे आ जाए, चाहे संत कबीर पे आ जाए, चाहे गुरु नानक पे आ जाए, चाहे महात्मा मंगत राम पे आ जाए, चाहे रामकृष्ण परमहंस पे आ जाए, पूर्ण गुरु पर जब निश्चय आएगा तब आप गुरु के जीवन को देखोगे, फिर शास्त्र से तुलना करोगे, फिर आपको पता लगेगा कि हर बात तो यहां दिखाई पड़ रही है, जो शास्त्र में लिखा है सब दिखाई पड़ रही है, यही बात। तब आपको निश्चय आता है ये प्रैक्टिकल ज्ञान है, ये थ्योरी नहीं है, यहां पर कोई भी थ्योरी नाम की वस्तु है ही कोई नहीं। लेकिन ईश्वर वहां है जहां बुद्धि का संकल्प नहीं जा सकता। इसका मतलब जीव ने पूरी तरह से अपने आप को 100% समर्पण करके ही चलना होता है। वहां विचार से ईश्वर नहीं देख सकते, विचार से अनुभव नहीं कर सकते, विचार का वहां त्याग करना पड़ता है। जो पहुंचा है वहां पर निर्विकल्प होके पहुंचा है। तो बुद्धि का जो निर्णय है वो तो कल्पना है ना, तो बुद्धि निरसंकल्प होकर वहां पहुंचती है, जीव निरसंकल्प होकर वहां पहुंचता है। और निरसंकल्प अवस्था कब आती है, जब आपके ऊपर 100% विश्वास काम करता है और आपका समर्पण जो 100% गुरु पर पूर्ण होता है। गुरु पर समर्पण, ईश्वर पर समर्पण एक ही बात है, गुरु शरीर नहीं। तो इसीलिए ये विज्ञान बड़ा स्पष्ट है लेकिन गहरा जरूर है, क्योंकि नाम रूप गुण कर्म से शुरू होता है और नाम रूप गुण कर्म के ऊपर उठकर ये खत्म होता है। तो मेरी सोच, मेरा अनुभव तो सारा नाम रूप गुण कर्म के अंतर्गत है, इसलिए बिना समर्पण के मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं, संभव ही नहीं। इसीलिए गुरु के आगे पूर्ण समर्पण चाहिए। उस समर्पण के साथ यदि इसी वाणी का अध्ययन करोगे ना, महाजी की वाणी का, ये सारे निर्णय जो बीच बीच में आपको सुनाता हूं मैं सिद्धांत के रूप में, या बुद्धि पकड़ने लगेगी। लिखा तो है यहाँ पर कि सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, मानने की बात का लिखिए, जानने की बात लिखिए। वहां लिखा है सकल जगत का कर्ता मानो एक भगवान, या सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान। मानो जानो में कितना बड़ा अंतर है, क्योंकि संपूर्ण प्रकृति की व्यवस्था मैं नहीं कर रहा हूं, ईश्वर ही कर रहा है। इसलिए मैंने इसी बात को जानना है कि मेरे अधीन कुछ भी नहीं है, तो काहे को मैं कोहलू का बैल बना घूम रहा हूं संसार में। इस प्रकार कोहलू के बैल की दुर्गति होती है, मेरी भी सारी जिंदगी दुर्गति होगी जब तक जीऊंगा मैं, सदगति मेरी हो ही नहीं सकती। सदगति तभी होगी जब उस सतरूप परमेश्वर को मैं अपना गुरु समझूंगा, उसको करता समझूंगा, उसके अधीन में जीना शुरू करूंगा और उसकी अधीनता स्वीकार करके उसी के दर्शन के लिए उससे प्रार्थना करूंगा, तब मेरी मंजिल पूरी होगी। ओम।